الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. तो इस क्लास में हम किताब अल हजर वल इबाहा पढ़ रहे हैं, तसहील बहरसी ज़ेवर में से, और उसमें से हुकूक वालिदैन का टॉपिक है, जो कि पेज नंबर 313 के ऊपर है। यानी गजवाए बदर में जो मुसलमानों की तादाद थी 313, ठीक है। तो हुकूक वालिदैन का टॉपिक जो है, उसकी एक निस्बत हमारी इस किताब के हिसाब से गजवाए बदर से भी बनती है। यानी वो वाला गजवा के जिसके अंदर मुसलमानों के पास मादी असबाब नहीं थे, बस अल्लाह ही अल्लाह, ठीक है, अल्लाह ही पर भरोसा और अल्लाह ही की जात के ऊपर मुकम्मल तवक्कुल के साथ जो है वो अपने दुश्मनों के साथ लड़ा था मुसलमानों ने गजवा बदर में। तो हुकूक वालिदैन भी कुछ ऐसे मामला लगता है कि जिसके अंदर हमारे पास मादी असबाब नहीं होते, बस अल्लाह ताला के साथ एक कनेक्शन होता है, एक सही ताल्लुक अगर हो, तो फिर हुकूक वालिदैन जो हैं वो सही सही अदा हो सकते हैं। और अगर ये ताल्लुक ना हो तो फिर मारे बांधे ये अदा नहीं हो सकते, ठीक है। या तो उसमें ज्यादती होगी या उसके अंदर जो है वो कमी बेशी होगी, या तो इफरात होगा या उसके अंदर तफरीत होगी, ठीक है। ये भी कमोबेश वही बीवी वाला मामला भी ऐसा ही है ना, कि सूरह निसा के अंदर जहां बीवियों के हुकूक, औरतों के हुकूक की अल्लाह ताला ने बात फरमाई, तो वहां पर जा बजा तकवा, जा बजा तकवा का हुक्म फरमाया। हत्ता के सूरह तलाक में भी, जहाँ पे बीवी को तलाक देने वाले मसाइल हैं, तो वहां पर भी तकवा का हुक्म फरमाए, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लकुम फुरकाना, राइट। तो तकवा क्या है? ये बंदे और अल्लाह ताला के दरमियान एक ताल्लुक है कि अल्लाह की नाफरमानी से बंदा बचे, अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिए हैं उन हुक्म के अंदर इफरात और तफरीत ना करे, उनको अपनी निगाहों से ओझल ना होने दे। ये तकवा है, कॉन्शियसनेस ऑफ अल्लाह, कॉन्शियसनेस ऑफ अल्लाह, अल्लाह का डर और खौफ खाली नहीं, बल्कि अल्लाह ताला का ध्यान, अल्लाह ताला का इस्तेहजार, ठीक है, और उसके मुताबिक अपने जिंदगी के फैसले करना। तो हुकूक वालिदैन, ठीक है, तो इसमें भी क्या, इन अल्लाह यामुरकुम अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा, जो अहल हैं, जो जो हमारे पंजाब के एक भाई हैं, वो कहते हैं जोनसी, राइट, जोनसी। तो यहाँ पे जाना, वो जोनसी वाला लफ्जी जो है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है। जोनसी वाली अमानत का जो हकदार है उसको वही वाली अमानत दी जाए, किसी की अमानत उठा करके किसी दूसरे को ना दे दी जाए, राइट। बीवी की अमानत उठा करके माँ बाप को ना दे दी जाए, और माँ बाप की अमानत उठा करके बीवी साहिबा को ना दे दी जाए, ठीक है। तो क्या फरमाते हैं परवरदिगार, इन अल्लाह यामुरकुम अन तुअद्दुल अमानाते इला अहलिहा, ठीक है, उस अमानत के अहल को ही तुम वो अमानत दो। तो पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे सफ़ा नंबर 316 और 17 के ऊपर, जो मसला नंबर 2 था, कि जो काम, यानी उस वाली हदीस से जो मसला निकाला था कि तुम्हारी औलाद अल्लाह ताला का अतिया है, अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं लड़कियां देते हैं, जिसको चाहते हैं लड़के देते हैं, बस वो औलाद और उनका बाल तुम्हारे लिए है जब तुम्हें ज़रूरत हो, ठीक है। इस जुमले के ऊपर भी काफी सारी बात करी थी कि जब तुम्हें जरूरत हो, बिला जरूरत जो है ना वो डिमांड्स ना करते रहा करो, और उसमें से अपना अपना जाती माल समझ करके ना लेते रहा करो। ठीक है, तो फुकहा ने जिनको जिन्होंने हदीस मुबारक को हमसे ज्यादा बेहतर समझा है, राइट, फुकहा उनको इसीलिए कहा जाता है ना कि अल्लाह ताला ने उनको फकाहत अता फरमाई, तकवा भी अता फरमाया, तो उन्होंने हदीस को हमसे ज्यादा बेहतर समझा। तो उन्होंने क्या फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद से इस मसले की ताईद होती है, जो मसला अभी इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह तआला अन्हा के कौल से अखज किया था, नीज हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्ह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद, तू और तेरा माल तेरे बाप के लिए है, कि यही तफसीर की है कि इससे मुराद नान नफका है, इससे मुराद नान नफका है। और नान नफका का मतलब क्या होता है? तंदूर की नान, राइट, नान किसको कहते हैं? तंदूरी नान, ठीक है ना। और नफका किसको कहते हैं? नफक से लफ्ज नफका निकला। यानी क्या मतलब इसका नान नफका? कि इंसान की जो बुनियादी जरूरियात होती हैं, जरूरत किसको कहते हैं? जिससे उसका एक मुनासिब गुजारा हो जाता है, मुनासिब गुजारा हो जाता है, उसको जरूरत कहा जाता है। तो नान नफका से मुराद जो है वो जरूरियात जिंदगी होती हैं। ठीक है, तो हम नबी अलैहिस्सलाम की बातों को अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हा से ज्यादा नहीं समझ सकते, ज्यादा अच्छी तरह हमें बात समझ में नहीं आ सकती कि नबी अलैहिस्सलाम क्या फरमाना चाह रहे थे। ठीक है, तो नान नफका ही इसकी तफसीर है। ठीक है, तो अब इसमें जो मसला नंबर 2 था, वही हम पिछली क्लास के अंदर पढ़ रहे थे कि जो काम शरण वाजिब ना हो और ना ही नाजायज काम हो, बल्कि जायज हो, चाहे मुस्तहब ही हो, और माँ बाप उसके करने या ना करने का हुक्म दें, तो उसमें तफसील है। ठीक है, नाजायज काम को तो करना ही नहीं है, चाहे माँ बाप कहें, चाहे बेगम साहिबा कहें, चाहे जो है वो शौहर साहब कहें, चाहे कोई भी कहे, लेकिन जो चीज जायज हो, चाहे जायज में से मुस्तहब उसकी उसका दर्जा हो, माँ बाप उसके करने या ना करने का हुक्म दें, तो उसमें तफसील है। फर्ज का हुक्म दें तो उसमें कोई तफसील नहीं है, फर्ज तो अल्लाह का हुक्म भी है, अगर माँ बाप भी हुक्म दे रहे हैं तो फर्ज तो फर्ज ही रहेगा। ठीक है ना, माँ बाप हुक्म दे रहे हैं फर्ज करने का, वाजिब करने का, तो भाई अल्लाह भी हुक्म दे रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हुक्म दे रहे हैं, माँ बाप भी हुक्म दे रहे हैं, वो फर्ज तो करना ही करना है। और बहुत अच्छी बात है, इतने अच्छे माँ बाप तो अल्लाह का और शुक्र अदा करना चाहिए ऐसे माँ बाप के ऊपर, कि जो कि अल्लाह के हुक्म को करने का हुक्म दे रहे हैं अपनी औलाद को। यहाँ पे फर्ज और वाजिब की बात नहीं हो रही, यहाँ पर मुस्तहब की बात हो रही है, कि जिसको करने से सवाब मिलता है, ना करने से कोई गुनाह नहीं होता। ठीक है, तो अगर माँ बाप किसी ऐसी चीज का हुक्म दें या ना करने का हुक्म दें, तो इसमें तफसील है। देखना चाहिए कि उस काम की उस शख्स को ऐसी जरूरत है कि इसके बगैर उसको तकलीफ होगी, मसलन गरीब आदमी है और उसके लिए अपने इलाके में कमाई की कोई सूरत नहीं, मगर माँ बाप बाहर नहीं जाने देते, तो ऐसी सूरत में माँ बाप की अताआत जरूरी नहीं है। ठीक है, अपने ही गांव में, अपने ही शहर में रह करके वो अपने बीवी बच्चों की जरूरियात पूरी नहीं कर पा रहा है, माँ बाप का नान नफका भी नहीं अरेंज कर पा रहा है। ठीक है, और माँ बाप कहते हैं कि बाहर मत जाओ। ठीक है, तो ऐसे सूरत में माँ बाप की अताआत जो है वो जरूरी नहीं है। ठीक है, और अगर इस दर्जे की जरूरत नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि अपने गांव में रह करके जो है वो जरूरियात पूरी नहीं कर पा रहा है, ऐसा मसला नहीं है, बल्कि इसके अलावा किसी किस्म की सिचुएशन है जिसमें माँ बाप उसको करने या ना करने का हुक्म दे रहे हैं, तो फिर देखना क्या चाहिए? तो फिर ये देखना चाहिए कि इस काम में बीमारी या हलाकत का कोई खतरा है या नहीं है। यानी माँ बाप उसको कोई ऐसा काम करने को कह रहे हैं कि जिसके अंदर उसके लाजम उसके बीमार होने के यानी कवी एहतमाल है, 100% का तो किसी को पता नहीं होता कि बीमार होगा कि नहीं होगा, लेकिन कवी एहतमाल है कि इस जगह पे जाने से वो बीमार हो जाएगा, क्योंकि वहां पर बीमारी फैली हुई है। ठीक है, माँ बाप कह रहे हैं कि वहां जाओ तो नहीं, इसमें भी माँ बाप की अतात की जरूरत नहीं है। या किसी जगह जाने से इसको यानी नुकसान का कवी एहतमाल है और माँ बाप रोक रहे हैं उस जगह जाने से, ठीक है, तो फिर तो माँ बाप की अतात करनी है, मुखालफत जायज नहीं है। ये आगे लिखा हुआ है, अभी पढ़ा नहीं अभी हमने वो। ठीक है, ये भी देखना चाहिए, नीज ये भी देखना चाहिए कि इस शख्स के इस काम में मशगूल हो जाने से वालदैन की खिदमत का इंतजाम ना होने की वजह से उनको तकलीफ पहुंचने का कवी एहतमाल है या नहीं है। ठीक है, अगर वो उस काम में मशगूल हो गया, गांव से चला गया, ठीक है, तो वालदैन की खिदमत का इंतजाम ना होने की वजह से उनको तकलीफ पहुंचने का कवी एहतमाल है, ठीक है, या नहीं है। तो अगर कवी एहतमाल है माँ बाप को तकलीफ पहुंचने का, तो फिर उसको नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना, मुखालफत जायज नहीं है। माँ बाप उसको रोक रहे हैं कि नहीं देखो तुम चले जाओगे ना तो हमारी जरूरियात कौन पूरी करेगा, हमें तकलीफ होगी, तो फिर माँ बाप की मुखालफत जायज नहीं है। ठीक है, अगर इस काम में खतरा है या उसके गायब हो जाने से यानी चले जाने से उनको तकलीफ पहुंचने का अंदेशा है तो उनकी मुखालफत जायज नहीं। ठीक है, अब यहां पर हमने आपको पिछले हफ्ते क्या बात बताई थी जी, कोई आप में से बताए। इस जुमले में एक लंबी डिस्कशन हुई थी पिछले हफ्ते की क्लास में, वो क्या थी, कोई जल्दी से उसका जवाब दे दे तो फिर हम आगे बढ़ें। मुख्तसर अल्फाज में, बल्कि दो दो तीन अल्फाज में भी आप जवाब दे सकती हैं। ठीक है, क्या ये आपके आपके जो जवाब है उससे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप हाँ बोल रही हैं कि ना बोल रही हैं कि खिलाफ बोल रही हैं कि हक में बोल रही हैं, तो ऐसा देना कि जिससे कि यहाँ पे कौन सी वाली। अच्छा चले ठीक है, डिस्कशन यही हुई थी, हाँ बस इतना जवाब काफी था कि जिस्मानी तकलीफ मुराद है यहाँ पर, यहाँ पर जिस्मानी तकलीफ मुराद है, फिजिकल तकलीफ की बात हो रही है, इमोशनल और साइकोलॉजिकल तकलीफ की बात नहीं हो रही है, इमोशनल और साइकोलॉजिकल तकलीफ की बात नहीं हो रही है, जिस्मानी तकलीफ की बात हो रही है। ठीक है, ये काफी लंबी डिस्कशन पिछली क्लास में हो गई थी, अगर किसी ने मिस कर दी थी तो वो रिकॉर्डिंग से जो है उसको सुन सकते हैं। अगर अलबत्ता किसी को अगर कोई इश्काल हो या कोई एतराज हो तो वो अभी भी सवाल पूछ सकती हैं। ठीक है, तो बल्कि क्या कहते हैं कि अगर इस काम में खतरा है या उसके गायब हो जाने से उनको तकलीफ पहुंचने का अंदेशा है तो उनकी मुखालफत जायज नहीं है बल्कि अतात वाजिब है, और अगर दोनों बातों में से कोई बात नहीं यानी ना इस काम या सफर में उसको कोई खतरा है और ना वालिदैन को तकलीफ पहुंचने का कोई एहतमाल है तो बिला जरूरत भी वो काम या सफर उनकी ममानियत के बावजूद जायज है। ठीक है, उनकी ममानियत के बावजूद वो सफर जायज है, अगरचे मुस्तहब यही है कि इस वक्त भी उनकी अताअत करे। ठीक है, मुस्तहब यही है कि मुस्तहब का मतलब क्या है कि करेगा तो सवाब मिलेगा लेकिन नहीं करेगा तो गुनाह नहीं मिलेगा। ठीक है, अब मुस्तहब का मतलब ये नहीं है कि किसी दूसरे का हक मार रहे हैं तो किसी दूसरे का हक मार रहे हैं तो वालिदैन की जो है वो फिर भी अताअत कर लेनी चाहिए, मुस्तहब है नहीं। ठीक है ना, किसी दूसरे का हक मारने के सिचुएशन में तो माँ बाप की अताअत नहीं की जा सकती क्योंकि हर एक का हक अदा करना जो है ये अल्लाह ताला का हुक्म है। अच्छा, किसी तालिबा ने ये सवाल किया है तो उन्होंने आप इसको कॉपी कर दिया, क्या है कि हम पूछना चाह रहे थे कि ये बात तो है ही कि हमें सबके हुकूक अदा करना है लेकिन जो हुकूक होते हैं लोगों पर हमारे क्या वो हमारे हुकूक में कमी करें या हमारी दिल आज़ारी करें, तो उन्हें अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ करना क्या ये जुल्म सहना कहलाएगा? और वो है ना कि ना तुम जुल्म करो ना तुम जुल्म बर्दाश्त करो बल्कि इंसाफ करो। और हम तो इतना सही से इंसाफ नहीं कर सकते हैं अगर ज्यादती हो गई तो, ठीक है ना? तो ये जो आपने माशाल्लाह आपने क्या जवाब दिया इसका उनको? चलें आप लोगों से पूछते हैं इनको क्या जवाब देना चाहिए, खुसूसन जो तकरार ग्रुप्स की निगरान हैं या जो मुअल्लिमा के रोल में हैं, उनको तो इस सवाल का जवाब जो है ना वो मालूम होना चाहिए, ठीक है ना? तो आपसे सवाल ये है कि इस सवाल का आप क्या जवाब देंगी, ठीक है? इन अदर वर्ड्स, अंग्रेजी में थोड़ा सा, क्योंकि आप में से अक्सर को तो इतनी तो आती ही है अंग्रेजी, कि हाउ शुड यू एड्रेस दिस क्वेश्चन, हाउ शुड यू एड्रेस दिस क्वेश्चन? जी इस सवाल का क्या जवाब देना चाहिए? माफ करने का मतलब ही यही है कि आपने उनका अमल गलत समझा, गलत जवाब, ठीक है ना? हाउ शुड यू एड्रेस दिस क्वेश्चन? और सबसे पहले जो है ना वो अंग्रेज ने ही गलत जवाब दिया है, राइट? तो जिनको जो है वो अंग्रेजी नहीं आती थी तो वो तो चले मेरी बात नहीं समझे, जिनको सबसे ज्यादा अंग्रेजी आती है उन्होंने गलत जवाब दिया, ये तो बड़ी बुरी बात है। हाउ शुड यू एड्रेस दिस क्वेश्चन? जी चले, वक्त की कमी की खातिर जो है ना वो हम इतना इंतजार नहीं करते। सबसे पहले जो है ना जो सवाल करने वाला होता है ना, सॉरी, जिससे सवाल किया जाता है, मसऊल जिससे सवाल किया जाता है, सबसे पहला काम किया है उसका, उसका सबसे पहला काम किया है सूरह बनी इसराइल की तफसीर से जवाब ना दीजिएगा, ठीक है? जिसके अंदर था ना कि अपने साहिल को जो है वो जानना, ये हमने सूरह बनी इसराइल की तफसीर में पढ़ा था पिछली क्लास में, परसों वाली क्लास में, ठीक है? कि मसूल के लिए जरूरी है कि वो साहिल को जाने, साहिल को समझे ताकि उसके हिसाब से जवाब दे सके, ठीक है ना? लेकिन वो सबसे पहला काम नहीं है, साहिल को जानना जो है वो किसी सवाल के वक्त जो है ना वो सबसे पहला काम ये नहीं, वो साहिल को तो पहले से जानना चाहिए, साहिल के बारे में, सवाल करने वाले के बारे में मसूल को पहले से पता होना चाहिए। जब वो कोई सवाल करे तो सबसे पहला करने का काम क्या होता है? और दुआ भी नहीं, मैं दुआ आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, ठीक है? ये भी नहीं पूछ रहा आपसे, अल्लाह से मांगे कि जवाब हमारे दिल में डाल दे, नहीं। तो दुआ, तो यहाँ पे दुआ की बात नहीं हो रही है, ठीक है ना? हम आपसे एक यानी असबाब के दर्जे में सवाल पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए सबसे पहले, बहुत बहुत अहम मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, और आप कोशिश करें इसका जवाब देने की। सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? हम अपने आप को सही करना चाह रहे हैं, ये सब छोड़ दें आप, ये हम आपसे पूछ ही नहीं रहे, हम आपसे कह रहे हैं सबसे पहले सवाल के साथ क्या करना चाहिए? सवाल समझना, ठीक है? नाउ यू आर गेटिंग देयर, नॉट देयर येट। सवाल पर गौर, सवाल समझना, ठीक है ना? और अगर सवाल के अंदर कोई गलत बात लिखी हुई हो, कोई सवाल में ही कोई बात गलत हो, तो फिर उसको यानी सबसे पहले हमारी जुबान में कहते हैं डाइसेक्शन करना, ठीक है ना? सवाल की सर्जरी करें सबसे पहले, सवाल की सबसे पहले डाइसेक्शन करें, डाइसेक्शन समझते हैं ना, सर्जरी करना उसको, काट पीट करना उसको, राइट? क्योंकि जब तक आप सवाल सही नहीं होगा, जब तक आप खुद सवाल को समझेंगी नहीं, आपने क्या जवाब देना है?
इसी वजह से मसूल जो है ना, मसूल ही और शी हैज टू बी ए गुड लिसनर, वो तवज्जो से बात सुने, ये सबसे अहम ट्रेट है ये, कि वो सवाल करने वाले की बात को सुने, उसको समझे, उसके अंदर कोई गलत बात है, उसके अंदर कोई मजहूल बात है, तो उसको पहले क्लियर करे, सवाल को पहले क्लियर करे, फिर उसके बाद जवाब की बारी आएगी ना। ये हैज नफास के जो जो लोग इसकी माशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं, तो आपसे कोई हैज का अपना सवाल पूछती है, कोई नफास का सवाल पूछती है, कोई इस्तेहाजे का सवाल पूछती है, कि आप उसको जवाब दे सकती हैं जब तक सवाल ही क्लियर ना हो, राइट? या सवाल ही के अंदर उसने कोई गलत चीज कह दी है, तो अब आप उसको पहले करेक्ट नहीं करवाएंगी, ठीक है ना? पहले उसको सही करेंगे ना, फिर उसके बाद जवाब देंगे ना। उसके बगैर तो हैज निफास का जवाब देना मुमकिन ही नहीं है। वो भाई, ये सिर्फ हैज निफास और इस्तेहाजा के सवाल के साथ ही मामला नहीं है, हर सवाल का यही मामला है। अब देखिए, इनके सवाल के अंदर क्या गलत बात है, पहले तो मुझे चले अब ये बता दें, इनके सवाल में क्या गलत बात है, जो कि सवाल में ही गलत बात है, सवाल ही गलत है, ठीक है ना? इस सवाल में जुल्म सहना कहते किसको हैं, पहले तो इसका इल्म ना हो। नहीं, ये गलत नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना? इसके सवाल में क्या गलती है, ये मुझे बताएं। इनके सवाल में ही एक इंतहाई गलत बात है, वो क्या है? बर्दाश्त करना, ये गलत बात है, बर्दाश्त करना गलत बात है। इनके सवाल में क्या गलत बात है, ये बताएं। देखिए माशाल्लाह 74 है, 74 है ना, 74 खवातीन मौजूद हैं, और एक से एक जहीन भी हैं। किसी ने पीएचडी किया हुआ होगा, किसी ने कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, किसी ने जो है वो बायोलॉजी में एमएस किया हुआ है, किसी ने जो है वो आलमा कोर्स के अंदर है पीएचडी किया हुआ है, किसी ने कुछ किया हुआ है, किसी ने कुछ किया हुआ है, लेकिन नो वन कैन टेल कि इस सवाल के अंदर मसला क्या है। नो, नन ऑफ यू कैन टेल कि इस सवाल में मसला क्या है, ठीक है ना? नॉट इवन ए सिंगल वन ऑफ यू, कोई आप में से एक भी नहीं है जो कि इस सवाल के मसले को बता रही हो, ठीक है? तो कैसे जवाब देंगे फिर, जब अपने किसी को अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दिया, देर द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ गिविंग। आप तो सारे के सारे जो है ना, वो फिकी मसाइल और तसव्वुफ के मसाइल के ऊपर उतरी हुई हैं। वो भाई, सवाल के अल्फाज में मसला क्या है पहले तो ये बताएं ना, तसव्वुफ के मसाइल और ये सारी चीज़ तो आप बाद में कीजिएगा ना, अभी तो आपने पहले से शुरू कर दिया है अपनी माशाल्लाह अपना इल्म झाड़ना और अपना तकवा झाड़ना, तो आपने शुरू किया हुआ है सबने। सवाल में क्या गलती है ये किसी को नहीं पता, गौर से सवाल को सुने, सवाल को पढ़ें, बल्कि सामने लिखा मैंने सब। हम दूसरों के हक अदा करना, हुकूक को बयान करना, फिर वही बात। आप लोगों ने नहीं समझना, ठीक है ना? तो चलें, फकीरी बता देता है। इस सवाल में इन्होंने फरमाया क्या है, इन्होंने फरमाया है और वो है ना, अब समझ में आई? और वो है ना, ये क्या चीज होती है भाई? और वो है ना, वो क्या, वो व्हाट, राइट? वो है ना क्या है, कुरान की आयत, वो कुरान की आयत है ना, वो हदीस मुबारका है ना, वो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का कॉल है ना, वो मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह का कॉल है ना, है ये किधर से आया? वो है ना कि ना तुम जुल्म करो, ना तुम जुल्म बर्दाश्त करो, बल्कि इंसाफ करो, ये किधर से लेकर के आई है ये, है ये कहाँ से आया है ये? यानी शी इज बिल्डिंग हर क्वेश्चन ऑन दिस अजम्पशन, राइट? अजम्पशन है ये अपने सवाल को इस मफरूजे के ऊपर खड़ा कर रही हैं कि वो है ना। अब समझ में आई बात? तो सबसे पहले तो आपको उनसे ये पूछना है कि ये क्या है ना, समझ रही है, ये हैदराबादी वाला है ना होना, उनको कोई चीज मांगनी होती है ना, आप जो हैदराबाद की हैं, तो कहें ये होना, राइट, यानी वो चीज मुझे दे दो, तो कहती हैं वो होना, तो ये वो वाला होना है, ये क्या है, सही है, तो ये कहाँ से लेकर के आई है इस अजम्पशन को कि वो है ना। तो भाई जो मसूल है जिससे सवाल किया जा रहा है, सबसे पहले तो वो इनसे ये पूछे ना कि क्या आपने कुरान की कोई आयत पढ़ी है जिसमें ये बात, ये उसूल लिखा हुआ है जो आपने यहाँ पे बयान फरमा दिया है, ये कोई नबी अलैहिस्सलाम की बात है जो कि आपने यहाँ पे बयान फरमाई है जिसकी बुनियाद पर आप ये सवाल कर रही हैं। तो सवाल को डाइसेक्ट करें सबसे पहले, ठीक है ना, क्या कहते हैं उसको, उछाड़ उछाड़ पे खाड़ करें सवाल के साथ, ठीक है, क्योंकि लोग जो है ना वो सवाल करते हैं बेस्ड ऑन रॉन्ग अजम्पशंस, उन्होंने पहले से कोई जहालत वाली बात जो होती है वो एज्यूम करी हुई होती है, और उसकी बुनियाद पर जो है ना उन्होंने एक इमारत खड़ी की हुई होती है अपने जहन के अंदर, और उसी अपने तखयलाती इमारत की बुनियाद पर वो सवाल कर रहे होते हैं, है ना, जिस तरह हैज नफास के अंदर, राइट, औरत को ना हैज की तारीफ पता होती है, ना नफास की तारीफ पता होती है, ना इस्तेहादा की तारीफ पता होती है, अब वो जो है वो अपने मसाइल के बारे में सवाल पूछ रही है, ठीक है ना। तो फिर क्या करना होता है मसूलह को, जो आप में माशाल्लाह इसमें इल्म हासिल कर रही हैं, उनको पहले उनको हैज की तारीफ बतानी पड़ती है कि देखो हैज जिस चीज को तुम समझ रही हो वो हैज है ही नहीं, राइट, जिस चीज को तुम इस्तेहाज़ा समझ रहे हो वो इस्तेहाज़ा नहीं होता, इस्तेहाज़ा तो किसी और चीज को कहते हैं, ठीक है। तो बहरहाल ये तो सवाल ही गलत है, तो अब इसकी बुनियाद पर जो उन्होंने बाकी अपनी, यानी जो जिस जिस अजम्पशन की बुनियाद पर उन्होंने सवाल लिखा है, तो वो फिर सवाल ही गलत है फिर, इसका मतलब है, ठीक है ना। ज्यादा सादा सा है कि अगर इंसाफ करने में आपसे गलती हो गई, ज्यादती, इंसाफ करने में ज्यादती हो गई, तो भाई फिर अल्लाह से माफी मांगे और इंसाफ करना सीखें, इल्म हासिल करें ताकि इंसाफ करना आ सके, ठीक है। बहरहाल तो वापस अपने इस पर आ रहे हैं कि ये हो गया, बस बहुत डिस्कशन हो गया इस पर। अगला पैराग्राफ फरमाते हैं कि इस उसूल से बाज़ फरोई मसाइल का भी हुक्म मालूम हो गया। फरोई मसाइल यानी जो ब्रांचेस, जो फुरुआत, जो शाखें निकलती हैं, तो उन मसाइल का भी हुक्म मालूम हो गया। मसलन क्या, इन कौन से फरूई मसाइल, मसलन माँ बाप कहें, वो कहें कि अपनी बीवी को किसी माकूल उजर के बगैर तलाक दे दो, अब वो तो ये बात नहीं कहेंगे कि जी मैं तुम्हें गैर माकूल वजह से कह रही हूं कि अपनी बीवी को तलाक दे दो, वो तो नहीं एक बात कहेंगे ना, है ना। अब्बा हुजूर जो है अपने बेटे साहब से कह रहे हैं कि मैं देखो तुम्हें एक बहुत ही गैर माकूल हुक्म दे रहा हूं कि तुम अपनी बीवी को तलाक दे दो, उन्होंने तो ये बात नहीं कहनी है, तो फिर आपने क्या करना है फिर उसके बाद, राइट, वही बात जो कि कई क्लास पहले भी बात हो चुकी थी कि सही बात तक पहुंचने के लिए अल्लाह ताला ने हमें दो नेमतें दी हैं, दो नेमतें दी हैं, एक अकल की नेमत दी है, ठीक है, और दूसरी जो है वो इल्म की नेमत दी, और अकल और इल्म जब दोनों मिलते हैं ना, तो फिर उसके बाद इंसान सही और गलत में तमीज कर सकता है, ठीक है। तो अकल के पास इल्म होगा तब वो सही फैसला कर सकेगी, तो इल्म या तो हासिल करें किताबों से, दुरूस से, या ये कि फसअलू अहले जिक्र इन कुंतुम ला तालमून, अपने परवरदिगार के इस हुक्म के ऊपर अमल करें कि अहले इल्म से पूछ लिया करो जिस चीज का तुम्हें इल्म ना हो, ठीक है। तो अब वो जो माकूल उजर के बगैर तलाक दे दो, या जो है वो बड़े शरीफ ज़ादे हैं वो तलाक का लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन हालात ऐसे पैदा कर दिए हैं कि बस अब बेटा तलाक दे ही दे, ठीक है ना, या ये कि उधर हैं लड़की वालों की तरफ की हैं, ठीक है, तो लड़की वालों में वो तलाक का लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल करें क्योंकि लड़की ने तो तलाक देनी ही नहीं है भाई, है ना, वो किताब में तो लिखा होता है कि अगर माँ बाप तलाक देने के लिए कहें ना गैर माकूल वजह से, तो जो है ना वो तलाक नहीं देनी चाहिए, तो लड़की वाले के माँ बाप तलाक का
अच्छा
करेंगे, क्या कहेंगे, खुला ले लो, राइट, खुला ले लो, राइट। तो अकल होगी तो फिर वो समझेगी ना कि जी खुला और तलाक जो है ना वो एक ही चीज है, एक ही, यानी उनका एंड रिजल्ट एक ही है, एक ही चीज तो नहीं है लेकिन उनका एंड रिजल्ट एक ही है, ठीक है ना। उसके पास अगर इल्म होगा तो फिर वो जानेगी ना कि अगर, यानी नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि जिसका मफहूम बनता है कि अगर बगैर उजर के, जो उसके अल्फाज क्या क्या है हदीस मुबारक, किसी को अगर याद हो, कि जो औरत अपने शौहर से खुला लेती है जबकि उसकी वही बात है कि जरूरत नहीं थी और जो है वो ऐसे हालात नहीं थे, तो फिर बहुत ही बुरी औरत है, यानी उसके ऊपर अल्लाह की लानत हो और उसके ऊपर जो है वो बहुत बहुत बुरे, यानी बहुत ही सख्त वईद है उस हदीस के अंदर, ऐसी औरत के ऊपर जो अपने शौहर से जो है खुला ले ले, ठीक है ना। अब खुला का भी रास्ता शरीयत के अंदर खुला हुआ है, लेकिन खुले हुआ जिस तरह से तलाक का रास्ता शरीयत ने खोला हुआ है उसी तरह खुला का रास्ता खोला हुआ है, ठीक है ना। लेकिन अब शौहर साहब जो है वो मेरे दिल से उतर गई थी इस वजह से मैंने तलाक दे दी, मेरा दिल नहीं मान रहा था इस वजह से मैंने तलाक दे दी, ठीक है ना। तो तलाक का जो दरवाजा अल्लाह ने खोल के रखा है इस वजह से कि आप बेगम आपके दिल से उतर गई थी, अल्लाह के बंदे कौन सी बेगम होती है जो कि शौहर के दिल से नहीं उतरती। कोई एक बेगम का आप नाम ले लें, इल्ला माशा अल्लाह कोई होगी, है ना, कोई खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अनहा जैसी कोई होगी जो कि शौहर के दिल से नहीं उतरती। कौन सी बेगम है जो कि शौहर के दिल से नहीं उतरती। ये तो रोजाना का मामला चलता है, अभी उतरी अभी चढ़ी, अभी उतरी अभी चढ़ी, कुछ जो है वो लंबे लंबे अरसे के लिए उतर जाती हैं, फिर उसके बाद जो है वो अल्लाह ताला कोई ऐसे मामला करता है, कुछ होता है, फिर वो चढ़ जाती हैं दिल के ऊपर, फिर जो है वो उतर जाती हैं, फिर वो चढ़ जाती हैं, ठीक है। तमाशा अल्लाह ताला ने बना के रखा है तुम्हारे लिए, निकाह करो और दिल से उतर गए, अब तलाक दे दो, जहालत के साथ, हठधर्मी और जिद और अनानियत और इस किस्म के भाई बेवकूफियों की कोई इंतहा होती है, तलाक दे दी उठा करके, ठीक है ना। और इसी तरह से उधर जो है वो जी खुला खुला ले लो, बस खुला जो है वो जाहिलों के जो है वो दिमाग के अंदर कोई चीज चढ़ गई है जी, अब तो ये कोई, अब तो ये वाजिब हो गया खुला ले लेना है, तो वो जो है वो खुला खुला फाइल कर दिया। और आजकल जो है वो खुला लेना सबसे आसान काम है, ठीक है, क्योंकि ये तो वो दौर है कि जिसके अंदर पूरी दुनिया जो है वो औरत को इमाम बनाने के ऊपर तुली हुई है, औरत इमाम बन जाए ताकि बेड़ा गर्क हो जाए इंसानियत का। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था ना कि जिसका जिस कौम की इमाम औरत हो वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। तो शैतान के क्या चाहता है, बनी नौए आदम, बनी नौए इंसान, ये कभी भी तरक्की ना करे, तो वो इमाम औरत को इमाम बनाने की, तो औरत इमाम कब बनेगी, जब वो शादी के बंधन से बाहर निकलेगी, इंडिपेंडेंट होगी, एम्पावर्ड होगी, जॉब करेगी, सीईओ बनेगी, तब वो इमाम बनेगी। जब वो इमाम बनेगी तो उसके बाद फिर उसको अल्लाह ताला ने इस काम के लिए बनाया ही नहीं था, तो उसको तुम इमाम बनाने की जो कोशिश कर रहे हो, चाहे जानबूझ के कर रहे हो, चाहे बेवकूफी में कर रहे हो, तो उसने तो फिर बेड़ा गरक करना ही है। इसी वजह से आजकल खुला लेने से ज्यादा आसान काम कोई और नहीं है। कोर्ट के अंदर जो बैठी हुई होती है ज्यादातर, तो जजेस जो होती है ना वो होती भी औरत ही हैं, जजेस भी औरत होती हैं, वो जो है वो खुला दे रही होती है, खुला करवा रही होती है, ठीक है। तो उन्होंने माशाल्लाह हदीस मुबारक मिशकात शरीफ से आप नकल भी फरमा दी कि जो औरत बगैर किसी वजह के अपने शौहर से तलाक का मुतालबा करे तो उस पर जन्नत की खुशबू भी हराम है, उस पर जन्नत की खुशबू भी हराम है, यानी बहुत दूर होगी वो जन्नत से। खुशबू का मतलब ये होता है बहुत दूर होगी वो जन्नत से, वो जन्नत के करीब भी नहीं फटक सकेगी। और आजकल जो इंडिपेंडेंट स्ट्रांग एम्पावर्ड वुमेन होती हैं, खुसूसन डॉक्टरनिया, खुसूसन डॉक्टरनिया, क्योंकि डॉक्टर डॉक्टर एक ऐसा पेशा है कि जो कि हर जगह चलता है, राइट। सारे पेशे खत्म हो सकते हैं अगर इकोनॉमी खराब हो जाए, कंप्यूटर्स वालों की जॉब खत्म हो जाएगी अगर इकोनॉमी खराब हो जाए, इंजीनियर्स की जॉब खत्म हो जाएगी अगर इकोनॉमी खराब हो जाए, या दूसरे कोई मसले पड़ जाए, राइट। गजा के अंदर किसकी जॉब मौजूद है, गजा के अंदर जो बमबारियां हो रही हैं सारी जॉब्स खत्म हो गई ना, सिवाय डॉक्टर के, क्यों, क्योंकि डॉक्टर की जॉब तो बढ़ती है, जब इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा तो डॉक्टर की जॉब बढ़ जाएगी, जब वॉर आएगी तो डॉक्टर की जॉब बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। इस वजह से डॉक्टरनियों का तो एक बड़ा मशहूर हालात ऐसे ही चल रहा है, मुझे तलाक दो, मुझे तुम तलाक क्यों नहीं दे देते, राइट? मुझे तुम तलाक क्यों नहीं देते, मैं अपना गुजारा खुद से कर लूंगी। क्योंकि उसको पता है वो डॉक्टर नहीं है, उसने अपना गुजारा बड़े अच्छे से कर लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए, उसको तो जॉब मिलनी ही है। कुछ नहीं करेगी तो प्राइवेट क्लिनिक कर लेगी, कुछ नहीं करेगी तो घर से ही जो है वो इलाज करना शुरू कर देगी, और लोग जो है वो पैसा देने के लिए तैयार है, अपनी जान बचाने के लिए, अपने बच्चे की जान बचाने के लिए। तो शौहर से तलाक का मुतालबा तो ऐसे करती हैं कि जैसे यानी तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो औरत बगैर किसी वजह के अपने शौहर से तलाक का मुतालबा करे, उस पर जन्नत की खुशबू भी हराम है। अब जाहिर है, जाहिर सी बात है, नबी अलैहिस्सलाम ने तो बात फरमा दी, और दीनदार औरत तो कहेगी हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं नबी अलैहिस्सलाम, ऑफ कोर्स नबी अलैहिस्सलाम की बात बिल्कुल हक है, लेकिन मैं तो बगैर किसी वजह के कोई थोड़ी मुतालबा कर रही हूँ, मैं तो इसी वजह से मुतालबा कर रही हूँ कि वो मेरे दिल से उतर गए, वो मेरे दिल से उतर गए, वो जो है ना वो मेरे साथ जो है वो वैसा सलूक नहीं करते जैसे वो अपनी अम्मी के साथ करते हैं, या अपनी बहन के साथ करते हैं, या जो है वो मेरा ये हक अदा नहीं करते, वो मुझे जो है वो जेब खर्च नहीं देते, या वो मुझे जो है ना वो ये फलाना ही नहीं करते, वो नहीं करते, मेरे पास तो बड़ी अच्छी वजह है, तो इस वजह से तो मैं अपने शौहर से तलाक का मुतालबा कर रही हूँ, तो मेरे ऊपर तो ये वईद नहीं आएगी जन्नत की खुशबू ना मिलने वाली, मैं तो जन्नत में डायरेक्ट जाऊंगी मरने के फौरन बाद, रेड कारपेट वेलकम मिलेगा मुझे जन्नत से, ठीक है ना? तो फिर कौन डिसाइड करेगा कि वजह क्या होती है? ठीक है, तो खुद से बेगम साहिबा तो डिसाइड करने से रही, जिस तरह से खुद से जो है ना वो आजकल के शौहर साहब और ना शौहर के अम्मा अब्बा जो है वो डिसाइड करने के काबिल हैं कि जो है ना वो जाए तलाक दे दें, वजह हो गई माकूल उजर हो गया, तो इसमें उनकी अतात वाजिब नहीं है, इसमें उनकी अतात वाजिब नहीं है। फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, और इस वक्त जो है वो जहालत ही जहालत है, तो सब के सब जो है ना वो जाहिल ही हैं, तो इस वजह से इल्म वालों से पूछना होगा। अच्छा, वो इल्म वाले जिन्होंने किताबें पढ़ी हुई हैं उनसे पूछना होगा, जिन्होंने किताबें पढ़ी हुई हैं, जब मुफ्ती साहब से जाके पूछ ले जी मैं तलाक दे दूं, मुफ्ती साहब को तो आपने जो अपना खेल खेल बताया है, शरी वजह ना, शरी उजुर कौन सा शरी उजुर होता है, जिसको शरीयत का पता होगा वो पहली बात, मुफ्ती साहब को शरीयत का पता है, लेकिन मुफ्ती साहब को ये तो नहीं पता ना कि आपकी क्या हरकतें हैं, आप कौन सा ड्रामा खेल रहे हैं, राइट? आप मुफ्ती साहब को कौन सा झूठ बयान कर रहे हैं, आप मुफ्ती साहब के साथ के सामने कौन सी जो है वो पिक्चर खींच रहे हैं, मुफ्ती साहब को तो ये बात नहीं पता, वो आलिमुल गैब तो नहीं है, नबी अलैहिस्सलाम आलिमुल गैब नहीं है, तो आज के मुफ्ती साहब कहाँ से आलिमुल गैब हो जाएंगे, राइट? तो आपके ड्रामों का तो उसको पता होगा ना, जिसको कि आपके जाती अहवाल का पता होगा, आपके घर का पता होगा, ठीक है ना? तो शरी उजर भी कह देना काफी नहीं होता, शरी उजर भी जो है ना वो आपके अहवाल के हिसाब से बनता है ना कि शरी उजर है कि नहीं है। बहरहाल, तो फरमाया कि इस उसूल से बात हो रही, उस मसाइल का भी हुक्म मालूम हो गया, मसलन वो कहें कि अपनी बीवी को किसी माकूल उजर के बगैर तलाक दे दो, तो इसमें उनकी अतात वाजिब नहीं है। इसी तरह अगर वो कहें कि अपनी सारी कमाई हमें दे दिया करो, तो इसमें भी उनकी अतात वाजिब नहीं है, अगर वो इस बात पर मजबूर करेंगे तो गुनाहगार होंगे, ठीक है? गुनाहगार होंगे का मतलब पिटाई के हकदार होंगे, पिटाई के हकदार होंगे। कौन सी पिटाई? जो अल्लाह की तरफ से होती है, जाहिर है औलाद तो नहीं माँ बाप की पिटाई कर सकती, अल्लाह तो उनके ऊपर है ना, औलाद तो नीचे होती है, अल्लाह तो ऊपर होता है ना, तो अल्लाह ताला की तरफ से पिटाई के हकदार हो जाएंगे। मसला नंबर 3, वालदैन अगर औलाद के माल में से इजाजत के बगैर मिकदारे जरूरत से ज्यादा लेंगे, तो वो जायद अज जरूरत उनके जिम्मे कर्ज होगा, कर्ज होगा जिसका मुतालबा दुनिया में भी हो सकता है। अल्लाह अकबर, कौन करेगा मुतालबा कर्ज का? जिसका कर्ज है वो मुतालबा करेगा कि कोई और मुतालबा करेगा कर्ज का? दुनिया में भी मुतालबा हो सकता है, कौन करेगा फिर मुतालबा इन माँ बाप से कर्ज का? कौन करेगा मुतालबा? औलाद करेगी मुतालबा, क्योंकि दुनिया में मुतालबे का मतलब क्या है, औलाद करेगी मुतालबा, और अगर ये यहां नहीं देंगे तो कयामत में देना पड़ेगा।
अगर यहां नहीं देंगे तो कयामत में देना पड़ेगा। ठीक है, हाथ उठाएं जरा। ये जो जूम के अंदर ऑप्शन आता है ना, रेज हैंड का ऑप्शन, ठीक है, हाथ उठाएं, उठा के बताएं कि इस वाले चैप्टर को पढ़ने से पहले ये बातें किस किस को पता था। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले वालिदैन के हुकूक के बाब में, वालिदैन के हुकूक के मौजू में ये बातें किस किस को पता थी। रेज हैंड का ऑप्शन अल्लाह ताला ने जूम के जरिए से दिलवाया है कि अगर औलाद के माल में से इजाजत के बगैर मिकदारे जरूरत से ज्यादा लेंगे तो वो जायद अज जरूरत उनके जिम्मे कर्ज होगा, जिसका मुतालबा दुनिया में भी हो सकता है, अगर यहाँ नहीं देंगे तो कयामत में देना पड़ेगा। माशाल्लाह, ठीक है। लेकिन सवाल वैसे ये था कि इस चैप्टर को पढ़ने से, आपने इस चैप्टर को पहले ही नहीं पढ़ा होता, तो पढ़ा हुआ होगा वैसे मेरा ख्याल। ठीक है, चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह, किसी को तो पता थी लेकिन बाकी सबको तो पता नहीं थी ना, तो आपने जो है माशाल्लाह इतना कुछ पढ़ा है तो उसके बाद तो आपको पता होनी भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसी को वाकई नहीं पता, नहीं पता किसी को, बल्कि बिल्कुल इसके बरअक्स पिक्चर है हमारे जहनों के अंदर, बिल्कुल इसके बरअक्स। ठीक है, तो देखें, अब आपकी जान छोड़ने से पहले या जस्ट चंद गुजारिशात करना चाह रहा था, ठीक है, वो ये है कि ये जो सारी बातें करी गई है ना, ये बातें जो हैं वो इसलिए नहीं की गई हैं, बेशक इसका नतीजा आपके दिलों में ये निकल रहा हो या ना निकल रहा हो, आई डोंट केयर, कि आप अपने वालिदैन से नफरत करना शुरू कर दें, ठीक है ना, कि आप अपने वालिदैन से नफरत करना शुरू कर दें कि मेरे वालिदैन ने ये नहीं किया या ये किया और ऐसा नहीं किया और वैसा नहीं किया। ठीक है, ये हरगिज का मकसद नहीं है, इसका मकसद बिल्कुल वही मकसद है जो कि इससे पहले जितनी हमने चीजें पढ़ी हैं, मिसाली औरत में से पढ़ें या मिसाली मर्द में से पढ़ें, उन सब का यही मकसद था कि हम अपनी इस्लाह और जो बात गलत है उसका इल्म हमारे जहनों में सही हो जाए, ताकि हम अपनी इस्लाह कर सके। ठीक है ना, अपनी इस्लाह के लिए, और अपनी इस्लाह के लिए लाजमी यह है कि जो गलत फहमियां हैं वो दुरुस्त हो जाए, वो गलत फहमियां, गलत इल्म हमारे जहनों से खत्म हो करके सही इल्म उसके अंदर आ जाए, तब ही हम अपनी इस्लाह कर सकते हैं। गलत को सही समझ करके इस्लाह हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो इसका हरगिज मकसद यह नहीं था कि आपके वालिदैन की मोहब्बत और इज्जत जो है ना वो आपकी निगाहों से कम हो जाए। ठीक है, बल्कि इसका मकसद ये था कि देखें, जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें हमारे ऊपर वाजिब करी हैं, ठीक है ना, तो उसको हम वाजिब समझना शुरू करें और उसको वाजिब मानना शुरू करें, और जो चीजें वाजिब नहीं करी हैं उनको वाजिब ना समझा करें, क्योंकि अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको वाजिब नहीं किया है। ठीक है, उसको हम वाजिब समझना शुरू कर देंगे तो ये हमारा गलत इल्म होगा और इससे फिर हमारा नुकसान होगा। पिछली क्लास के अंदर भी इसके ऊपर तफसीली बात हो चुकी है। ठीक है ना, अब वालिदैन ने जो भी गलतियां की, अगर हमारे हुकूक में कमी करी है, तो जैसे कि ऊपर वाली खातून ने वो सवाल भी किया था ना, भाई उन्होंने हमारे साथ ज्यादती करी तो हम उनको माफ कर दें उस ज्यादती के ऊपर, राइट, ज्यादती करी भी है तो भाई जो जो हमें बहुत सारी अल्लाह की नेमतें मिली हैं तो वो भी तो उनके वास्ते से मिली है ना, राइट, हम घर के अंदर अपने बचपन को हमने गुजारा, लड़कपन को गुजारा, वो घर उनकी मेहनतों से वो घर बना, उनकी मेहनतों से वो घर चल रहा था, राइट, उन्होंने हमारे खाने पीने का इंतजाम किया, कपड़े लत्ते का इंतजाम किया, हमारी सर्दी गर्मी में जो है वो हमारे इलाज का इंतजाम किया, राइट,
तो इतने सारे उनके एहसानात भी तो हमारे ऊपर है ना, ठीक है ना। तो अगर उन्होंने गलती करी भी है तो उसको हम माफ करें, ठीक है ना, उनकी गलतियों को उनके खिलाफ इस्तेमाल ना करें, उनको ताने ना दें इसके ऊपर, उनको उनकी गलतियों का एहसास ना दिलाएं, ये हम हरगिज नहीं करें। लेकिन अपनी इसलाह तो करें ना कि हम अपनी औलाद के साथ वो हरकतें ना करें, वो गलतियां ना करें जो कि हमारे साथ हुई, इस वजह से कि भाई मेरे साथ भी तो हुआ था तो मैं भी तो उसको आगे फिर करूं। नहीं, अपनी इसलाह करें, क्योंकि हर बंदा जो होता है वो अपने अमल का जिम्मेदार हो। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, तिल का उम्मतुन कद खलत, अगरचे कि ये अंबिया अलैहि सलाम की बात है, ठीक है, लेकिन उसूली तौर पर ये हमारे इस मामले में है कि भाई वो तो एक उम्मत थी, वो तो कुछ लोग थे जो कि गुजर गए। तिल का उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबत, ठीक है ना, उनके लिए वो है जो उन्होंने कमाया और तुम्हारे लिए वो है जो तुम कमाओगे, राइट। वला तुसअलूना अम्मा कानू यअमलून, तुमसे इस बात का सवाल नहीं किया जाएगा जो कि उन्होंने किया, तुमसे इस बात का सवाल नहीं किया जाएगा, तुमसे तो उस बात का सवाल किया जाएगा जो कि तुम कर रहे हो, जो कि तुम कमा रहे हो, ठीक है। लेकिन अजीब, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी के बाद जो है ना वो एक और बात फरमाई, इसी आयत के बाद जो दूसरी आयत है ना वो क्या है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमन अज़लमु मिम्मन कतमा शहादतन इंदहू, ठीक है, कि उससे ज्यादा कौन जालिम होगा कि जिसने उसके पास अगर कोई शहादत मौजूद है, ठीक है ना, शहादत कैसे देते हैं, इल्म मिलता है तो फिर उसकी बुनियाद पर आप शहादत देते हैं, उस बात को जो है वो आप बयान करते हैं। कतमा शहादतन, जिसने इल्म को छुपाया, कितमाने इल्म, जिसके पास कोई बात आ गई, कोई इस बात समझ में आ गई, कोई बात उसके सामने हकीकत खुल गई कि भाई ये गलत है ये सही है, जिसने उसको छुपाया, उससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है। वमन अज़लमु मिम्मन कतमा शहादतन अंदहु मिन अल्लाही वमल्लाहु बिगाफिरिन अम्मा तअमलून, और अल्लाह ताला गाफिल नहीं है उस चीज से जो कि तुम अमल करते हो। क्या मतलब इस बात का कि जस्ट बिकॉज दे आर आवर पेरेंट्स, हम अगर वालदैन के हुकूक के बारे में बातें करेंगे तो हमारे वालदैन के ऊपर बुरा इंप्रेशन पड़ेगा लोगों का, राइट। लोग समझेंगे, ओहो इनके तो वालदैन ने लगता है इनके हुकूक अदा नहीं किए, इस वजह से बड़े जो है ना वो गुस्से में है वालदैन के खिलाफ, हर वक्त वालदैन के खिलाफ बातें करते रहते हैं, राइट। भाई जब हमारे पास कोई इल्म पहुंच गया, अल्लाह ताला ने हमारे सामने ये बातें खोल दी, मौलाना हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की समझाई हुई बातें, हमारे अपने बुजुर्गों की और बुजुर्गों की समझाई हुई बातें, नबी अलैहिस्सलाम की बातों का सही मतलब जब हमारे सामने आ गया, तो अब हम इस वजह से उसको छुपा नहीं सकते कि लोग कहेंगे कि लगता है कि इनके वालिदैन ने ये गलत किया और वो गलत किया और ये गलत किया और वो गलत किया, तो वालिदैन के ऊपर बुरा इल्जाम आएगा इनके, या हमारे वालिदैन के बारे में लोग ऐसे सोचेंगे। तो चलो जी हम इसको गोल कर देते हैं, इस टॉपिक को ही गोल कर देते हैं, इसके बारे में बात ही नहीं करते हैं। नहीं, ये कितमाने शहादत होगा, ये कितमाने इल्म होगा, और अल्लाह ताला फरमाते हैं उससे ज्यादा बड़ा जालिम और कौन हो सकता है, ठीक है। तो इस वजह से हम इल्म को नहीं, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते इन चीजों। बहरहाल लोग जो भी समझें उससे क्या फर्क पड़ता है, अल्लाह ताला हर एक के अमल को जानते हैं, अल्लाह ताला हर एक की नियत को जानते हैं, अल्लाह ताला ये भी जानते हैं कि किसने गलती करी अपनी सारी जिंदगी, लेकिन उसने अल्लाह ताला से माफी मांग ली, अल्लाह ताला ने सारे गुनाह माफ कर दिए। हमें क्या पता हमारे वालदैन ने गलती करी लेकिन उन्होंने माफी मांग ली अल्लाह ताला से, तो अल्लाह ताला ने उनको माफ कर दिया, या अगर नहीं भी माफी मांगी हम उनके लिए मगफरत की दुआ करते हैं, हम उनके लिए जो है वो ईसाले सवाब करते हैं, हम उनके लिए जो है वो अच्छा अल्लाह ताला से दुआएं मांगते रहते हैं, अल्लाह ताला माफ फरमा देंगे, ठीक है ना। लेकिन हम अपने अमल के तो जिम्मेदार हैं ना, अपनी इसलाह के तो जिम्मेदार हैं ना, राइट। तो उसके लिए हमें लाजिम है कि अपने इल्म को दुरुस्त करें, और उस दुरुस्त इल्म की बुनियाद पर ही हम दुरुस्त अमल के काबिल हो सकते हैं। बाकी ये कि वालिदैन के ये जो इतने ज्यादा टेक्निकलिटीज है ना, ये सिर्फ ये इसलिए नहीं है कि एक बंदा जो है जिसको कि कोई अल्लाह के हुक्म की फिक्र ना हो, आखिरत की पेशी का खौफ ना हो, उसके सामने आप ये सारी चीजें जो है वो बयान करते रहे, उसको सिर मुंह फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो उन लोगों के लिए है। ये सारी बातें क्या हैं? ये सारी बातें जो है वो सही इल्म है और उसकी याद दहानी है। ये जो हमने सारा ये चैप्टर पढ़ा है ना, ये क्या है? इल्म का सही होना, सही करना, ठीक है ना, और उसकी याद दहानी करा देना। ये किसको फायदा देती है? ये उसको फायदा देती है जो कि मानने वाला होता है। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, ठीक है, कि तुम याद दहानी कराओ उसको कि जो कि मानने वाला हो। ये जो वालिदैन के हुकूक के बारे में जो नबी अलैहिस्सलाम ये बातें फरमा रहे हैं ना, ये ईमान वालों के लिए, ये मानने वालों के लिए, ठीक है। और जो मानने वाला होता है उसको फिर याद दहानी से फायदा होता है, वरना वो वैसे ही अल्लाह की रजा के लिए नेकी का काम करता है। वो हर एक के हुकूक का ख्याल रखता है, हर एक के हुकूक का ख्याल रखता है, और उसको हर वक्त फिक्र रहती है कि कहीं उससे कोई गलत काम ना हो रहा हो कि उसको जो है वो अल्लाह के सामने जवाब देना पड़े, ठीक है। तो हम अपना मिजाज ये बनाए, देखें इन टेक्निकलिटीज है ना, कि भाई ये चीज वाजिब थी और ये चीज जो है वो उसमें आपको तफसील देखनी पड़ेगी, और इसमें जो है वो आपको हलाकत का खतरा है कि नहीं है, और इसके अंदर जो है वो तकलीफ होगी कि नहीं होगी, ये हर वक्त बैठ करके आप इस तरह की कैलकुलेशंस नहीं कर सकते, ठीक है ना। हर इंसान इस तरह से अपने रोजमर्रा के मामलात में कैलकुलेशंस नहीं कर सकता। एक मिजाज चाहिए होता है, ईमान वाला मिजाज, मुमिन वाला मिजाज, यानी मैं जो भी अमल कर रहा हूं अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर वाकिफ है, और मेरे बुरे अमल की मुझे सजा मिलेगी, मुझे मैं जो भी बुरा अमल करूंगा मुझे उसकी सजा मिलेगी, और नेकी के ऊपर अल्लाह ताला जजा देंगे, वो जाया नहीं होगी, मेरी नेकी जाया नहीं होगी, चाहे कोई देख रहा हो चाहे कोई ना देख रहा हो, इंसानों में से मेरी नेकी फिर भी जाया नहीं होगी, चाहे मुझे उसके ऊपर अप्रिसिएशन मिल रही हो चाहे मुझे अप्रिसिएशन ना मिल रही हो। एक तो होता है ना, पता ही ना चले आपकी नेकी का, तो ऐसा लगता है जैसे नेकी जाया हो गई, किसी को पता ही नहीं चला, जंगल में मोर ना जा किसने देखा, नहीं मैंने नेकी करी किसने देखी, कोई फायदा ही नहीं नेकी का। और एक होता है कि देखी तो लोगों ने लेकिन कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा, कोई उसके ऊपर आपकी वाह वाह नहीं कर रहा, कोई आपके उसके उसके ऊपर जो है वो पीठ नहीं ठोक रहा, क्या नेकी जाया हो जाएगी? नहीं, नेकी फिर भी जाया नहीं होगी, क्योंकि नेकी का अजर अल्लाह ने देना भी है कयामत के दिन, और दुनिया में भी अल्लाह ताला ने दिलवाना है, किसी भी वास्ते से दिलवाए अल्लाह ताला दिलवाता है, दुनिया ही में नेकी का सवाब मिलता है, अल्लाह ताला दिलवाता है दुनिया के अंदर, और कयामत के दिन अल्लाह ताला देगा। तो ये दिलवाना और देना ये नेकी के साथ लाजिम है, लाजिम है, इसको ईमान कहते हैं। उसी तरीके से गुनाह की सजा देना और दिलवाना ये भी लाजिम है, जब तक कि माफी ना मंगवा ली जाए, मांग ली जाए, लाजिम है। और गुनाह की जो सजा है वो इसी दुनिया से बल्कि इमीडिएटली शुरू हो जाती है। इंसान गुनाह करता है, एक पहर तक तो इंतजार किया जाता है कि ये माफी मांग ले, ठीक है ना, एक पहर, वो चार पहर होते हैं ना दिन के अंदर या पांच पहर होते हैं, तो एक पहर का जो वक्त है उसके लिए इंतजार किया जाता है, वो गुनाह लिखा भी नहीं जा रहा होता, लेकिन उसके बाद जब वो लिख लिया गया आपके नाम अमाल के अंदर, उसी वक्त उसकी सजा शुरू हो जाती है। अदल व इंसाफ फकत हशर पे मौकूफ नहीं, जिंदगी खुद भी अपने गुनाहों की सजा देती है, खुद भी गुनाहों की सजा देती है। तो जिस तरह नेकी का सवाब हर सूरत मिलके रहेगा, उसी तरह गुनाह की सजा भी हर सूरत मिलके रहेगी। तो ये है ईमान, ये है ईमान, राइट। तो ईमान वाला तो फिर अपने वालिदैन के साथ क्या, अपनी बीवी के साथ जुल्म नहीं कर सकता, अपनी औलाद के साथ जुल्म नहीं कर सकता, किसी के साथ भी जुल्म नहीं कर सकता, और अगर हो जाए जैसे ही उसको अंदाजा होगा कि मुझसे हो गया है, फौरन उसको फिक्र हो जाएगी मैं किसी तरह से माफ करवाऊं उसको, ठीक है। ये है असल चीज। किताब को पढ़ करके तो सिर्फ हमने अपने गलत इल्म को सही किया है, अल्लाह ताला इसी के हमें तौफीक अता फरमाते हैं, लेकिन जब तक ये मिजाज नहीं होगा ना,
ये फिक्र नहीं होगी, पेशी का खौफ नहीं होगा, उस वक्त तक ये सारा इल्म जो है वो हमें फायदा नहीं देगा। अल्लाह ताला से इस दुआ के साथ हम इस मौजू को मुकम्मल करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस हमारे लिए इस इल्म को फायदा मंद बना दे, नफा बख्श बना दे, इसको हमारे लिए इल्म नाफे बना दे, इल्म वार ना बनाए, यानी ऐसा इल्म ना बना दे जो कि हमारे खिलाफ बतौर हुज्जत के इस्तेमाल हो जाए कि तुम्हें तो मालूम था फिर तुम इसके खिलाफ क्यों करते रहे। ये होता है बतौर हुज्जत के इस्तेमाल हो जाना। अल्लाह ताला हमें बेहतरीन अखलाक अता फरमाए, एक दूसरे के लिए, हर एक के लिए, अपने खुसूसन अपने घर में साथ रहने वालों के लिए हमें बायस राहत व इत्मीनान बनाए, हमारे दिलों के अंदर नरमी पैदा फरमाए। अल्लाह ताला हमारी दुआओं को अपनी रहमत से कबूल फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह।